SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के मसले पर भड़की हिंसा को देखते हुए भारत सरकार भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने के प्रयास कर रही है। लगभग 1000 छात्र वापस भारत आ चुके हैं, जबकि विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश में कुल 8500 भारतीय छात्र और लगभग 15000 भारतीय मौजूद हैं। रविवार को इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवारों के लिए विवादास्पद कोटे को 30% से घटाकर 5% कर दिया, जिसके बाद हिंसा थमने की आशा की जा रही है। हिंसा बेशक बांग्लादेश में हो, लेकिन इसका असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजधानी कोलकाता की एक महारैली में संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तो केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन यदि कोई बांग्लादेशी हिंसा से बचने के लिए उनका दरवाज़ा खटखटाएगा तो वे उसे निराश नहीं करेंगी।
পরিজন থাকে, কেউ পড়াশোনা করতে যান, কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন, যদি কোনো সহযোগিতার দরকার হয়, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ, যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে।
ভারতীয় জনতা পার্টি নে সুশ্রী বনর্জি পর মুসলিম তুষ্টিকরণ কা আরোপ লাগাতে হুয়ে কাহা হ্যায় কি ওয়ে কিসি ভি কিমত পর বাংলাদেশ কো রোহিঙ্গিয়া মুসলমানো কি ধর্মশালা নহি বননে দেগি। ইউনেস্কো অর্থাৎ সংযুক্ত রাষ্ট্র শৈক্ষিক বৈজ্ঞানিক আর সাংস্কৃতিক সংগঠন কি विश्व विरासत समिति की 46वीं बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए असम के अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली मोइदम के विश्व धरोहर की प्रस्तावित सूची में शामिल होने का जिक्र भी किया।
वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोइदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है।
21 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में दुनिया भर की 27 जगहों का विश्व धरोहर के रूप में शामिल किए जाने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत दुनिया की कई जानी मानी संस्थाओं ने अपने एक शोध में दावा किया है कि भारत में कोविड-19 के दौरान सन 2020 में सरकारी आंकड़ों से 12 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। यह संख्या सरकारी अनुमान से 8 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान से 1.5 गुना ज़्यादा है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने भारत के ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मृत्यु दर डेटा का उपयोग किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि 2019-21 के दौरान लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में 2.6 वर्षों की गिरावट दर्ज की गई, जो किसी भी विकसित देश से अधिक थी। अध्ययन ने पाया कि उच्च जाति हिंदुओं में यह गिरावट 1.3 साल थी, जबकि मुसलमानों में 5.4 साल, आदिवासियों में 4.1 और अनुसूचित जातियों में 2.7 साल थी। मोदी सरकार ने इस अध्ययन को सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि NFHS का सैंपल केवल तभी देश का प्रतिनिधित्व करता है जब इसे समग्र रूप से माना जाता है। इस विश्लेषण में शामिल 14 राज्यों के 23% घरों को देश का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। आज सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 19 बैठकें होंगी। आज ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जबकि मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। संसदीय परंपरा के अनुसार केंद्र सरकार ने रविवार को संसद सत्र को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्रीय संसदीय कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी।
44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई, तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है।
विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद को सुचारू रूप से चलाने की मांग करते हुए कहा कि परंपरा के मुताबिक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए। बैठक में विपक्ष के सदस्यों ने साफ कर दिया कि वे कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने, नीट पेपर लीक, जम्मू और मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती विवाद, रेलवे सुरक्षा, अग्निवीर, चीनी अतिक्रमण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मामलों को संसद में उठाएंगे। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल ने कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकानों पर नाम लिखे जाने का भी विरोध किया। RLD के मुखिया और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने आदेश का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग भी की।
कहाँ कहाँ लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए।
नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में हुई कथित धांधली की सुनवाई के दौरान दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG 2024 परीक्षा में शामिल 23.22 लाख छात्रों के सेंटर और शहर के अनुसार रिजल्ट जारी किया है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिजल्ट के अनुसार देश भर में कुल 2321 छात्रों ने 700 या उससे अधिक अंक हासिल किए, जबकि 30,204 छात्रों को 650 से अधिक और 81,550 को 600 से अधिक अंक मिले। राजस्थान के सीकर स्थित कोचिंग सेंटर्स के 2037 उम्मीदवारों ने 650 से अधिक अंक प्राप्त किए। जयपुर में यह संख्या 1621, कोटा में 1066 और दिल्ली में 1376 रही। गुजरात के राजकोट स्थित एक अन्य कोचिंग सेंटर से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस केंद्र के कुल 1968 उम्मीदवारों में 250 से ज़्यादा छात्रों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 12 छात्रों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए। केंद्र सरकार का कहना है कि देश भर में समान रूप से वितरित आंकड़े साबित करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय आज फिर मामले की सुनवाई करेगा। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।